ओम शांति। एक फ्लाइट में एक मुसलमान व्यक्ति सफर कर रहा था, बिजनेस क्लास में बैठा था। तभी एक एयर होस्टेस आती है एक ग्लास लेकर और उसे देने का प्रयत्न करती है। वो पूछता है क्या है, वो कहती है फ्लाइट की तरफ से वाइन है, शराब। वो बड़ी नम्रता से मना करता है। उसे लगता है कि मेरी कोई भूल हो गई, शायद देने का ढंग गलत था। तो फिर जाती है और एक प्लेट पर उस ग्लास को रखती है और फिर आती है। वह कहती है ये फ्लाइट की तरफ से है, आपके लिए। वो फिर से नम्रतापूर्वक मना करता है और वो कहता है कि मैं शराब नहीं पीता। उसे बहुत बुरा लगता है। वो फिर जाती है और अपने मैनेजर से कहती है कि शायद मुझसे कोई गलती हो रही है। तो मैनेजर खुद एक नई प्लेट लेता है जिसमें आजू बाजू में थोड़े फूल भी डालता है और वो ग्लास लेकर जाता है उस व्यक्ति के पास और कहता है ये आपके लिए है। वो मुसलमान व्यक्ति कहता है मैं शराब नहीं पीता। वो मैनेजर कहता है थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं। तो वो व्यक्ति कहता है आप एक काम कीजिए, इस शराब को जो प्लेन का पायलट है उसको दे दीजिए। वो मैनेजर कहता है उसको हम कैसे दे सकते हैं, वो तो फ्लाइट चला रहा है, ही इज ऑन ड्यूटी, वो ड्यूटी पर है। अगर उसने ही शराब पी ली तो ये फ्लाइट क्रैश हो जाएगी और हम सब मारे जाएंगे। ये मुसलमान व्यक्ति कहता है मैं भी ड्यूटी पर हूं, मैं उस अल्लाह की खिदमत में हूं, यदि मैं इसे पी लूं तो मैं भी अपने फर्ज को भूल जाऊंगा और मेरा भी जीवन क्रैश हो जाएगा, ना केवल ये जीवन इसके अगला जीवन भी। इसलिए मैं ये नहीं पी सकता। ये स्मरण कि हम ड्यूटी पर है, किसकी ड्यूटी पर है, उस खुदा की, उसके हम खुदाई खिदमतकार हैं जिसे ये निरंतर याद है। वो सो नहीं सकता, बेहोश नहीं हो सकता, और संसार के प्रभाव में नहीं आ सकता क्योंकि बहुत कुछ करना है। हमारे कर्तव्य हमें पुकार रहे हैं, हमारे दायित्व सम्मुख खड़े हैं, हमारी ड्यूटी, हमारे फर्ज। वर्तमान समय जो संसार की हालत है उसमें हमें बहुत कुछ करना है, यदि हम ना करें तो कोई नहीं कर सके। तो लास्ट संडे की व्यक्तवाणी, बाबा ने संसार की स्थिति का वर्णन किया है, भक्ति का वर्णन किया है, संसार की आत्माओं का वर्णन किया है, वहां क्या हो रहा है और यहां क्या हो रहा है, उनकी क्या दशा है और तुम्हारी क्या होनी चाहिए। मुरली बहुत पुरानी है, 35 साल पुरानी है। अभी अभी एक जबरदस्त दुर्घटना हुई है भारत में, जिसमें हजारों लाखों लोग मर गए, प्रभावित हो गए। मुरली 12 तारीख की है, पिछले संडे की 10 तारीख की थी, और भोपाल का वो गैस कांड 3 तारीख की रात को हुआ था। मातम है, दुख है, आंसू है, दर्द है, दिल के दर्द का दुख है संसार में। 5 प्रकार के दुख गिनाए बाबा ने। अगर संसार में ये दुख है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। सबसे पहला दुख है तन का, फिर है मन का, फिर है धन का, तीसरा चौथा है संबंध का, और 5वां है प्राकृतिक आपदाओं का। सबसे पहला दुख संसार में जो है वो है शरीर के कर्म भोग। क्या कोई बीमार है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं, कड़े हिसाब किताब है शरीर के। असह्य वेदना है, पीड़ा है, शरीर निर्बल हो चुका है, दैनंदिन कर्म करने में भी दिक्कत है। ऐसे शरीर के कड़े हिसाब किताब, हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। दूसरे हैं मन के अल्पकाल की इच्छाओं की अपूर्ति। अल्पकाल की इच्छाएं जो मन में थी वो पूर्ण नहीं हो रही है, इसलिए दुखी है, ये दिल का दर्द है। पहले वाले तो कम होंगे, पर ये तो अधिकांश है, और वास्तव में देखा जाए तो सभी है। संसार की हर आत्मा कुछ ना कुछ चाहती है, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमा, कुछ ना कुछ चाहिए पर मिल नहीं रहा है, जो चाहा था वो नहीं मिला, इसलिए दुखी है, मन से दुखी है, मन ही रो रहा है, गिर रहे हैं आंसू और रुकते नहीं है आंसू, अविरल धाराएं बह रही है आंसू की, पर आंसू भी गुप्त है, दिखते भी नहीं। मीरा रोए चुपके चुपके, मेरो दर्द ना जाने कोई, ऐसी स्थिति है किसको बताए। तीसरा धन, बहुत या अधिक, दोनों में क्या है चिंता है। कम है तो क्यों हमारा ही नसीब ऐसा है, सब कुछ अमीरों को ही क्यों मिलता है, और ज्यादा है तो चिंता, कोई लूट ना ले जाए। चौथा संबंध संपर्क, ये तो बहुत सूक्ष्म है, वर्तमान समय सबसे अधिक खलबली जो संसार में यदि है तो वो है संबंधों में, संबंधों में खींचातान, संबंधों में अतृप्ति, संबंधों में कड़वाहट, संबंधों में बदले का भाव। एक कमन दूसरे के लिए मैला है, पुरानी रंजिशें इतनी जल्दी खत्म भी नहीं होती। और 5वां प्राकृतिक आपदाएं, जब सब कुछ लुट जाए, ऐसी हालत में कैसे इन आत्माओं को मदद की जाए। तो बाबा ने शुरुआत में क्या कहा, दिलाराम बाप किसको देख रहा है, दिल खुश बच्चों को देख रहा है। तीन बातें बताई। संसार में दिल के दर्द का दुख है और तुम खुशी में हो। तुम सुख करता दुख हरता बाप की संतान, दुख हरने वाले हो उनका, इसलिए तुम सुख स्वरूप हो। और तीसरी बात, उनके दिल से क्या निकल रहा है और तुम्हारे दिल से कौन सी आवाज है। उधर हाय हाय है, दर्द है, चीखो पुकार है, चित्कार है दर्द की, और तुम यहां खुशियों में नाच रहे हो। वाह वाह, माताओं को बाबा ने कहा है, माताओं को बाबा ने एक ही काम दिया है। कौन सा काम, कौन सा दिया है? गाने का और नाचने का और झूला झूलने का। और माताएं कौन है? जगत माता है। और माताएं कौन है? शक्ति दल है। और माताएं कौन है? सदा सुहागिन है। और माताएं कौन है? सदा हद के संस्कारों की गृहस्थी से मुक्त। कितने सम्मान दे दिए, सदा सुखी, सदा झूलने वाली, झुलाने वाली, सदा सुहागन। विधवा तो नहीं है ना कोई? विधवा क्या करती है? रोती है। अर्थात जो रोते हैं वो खोते नहीं, विधवा। तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। महावाक्य है सुपे की साकार मुरली के ना, कौन मिला है? पदम भाग्य, बाप मिला है, बाप आया है। ये नई बात है आज की मुरली में। क्या कहा? बाप आया है, ये नई बात है। बाप तुमको समझाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये दूसरी जगह बोला है, क्योंकि कल्प कल्प समझाया है। तो उधर दुख है, इधर खुशी है। उधर हाय हाय, इधर वाह वाह। पर है या नहीं? ये वैसा ही है जैसा उधर है, ऊपर से वाह वाह और अंदर से हाय हाय। और फिर बाबा ने बताया कि सारा संसार ही क्या हो गया है? दुखी। सारा संसार ही क्या? दिल के दर्द की पुकार। सारा संसार ही पुकार रहा है, दिल का दर्द है, बड़े गहरे जख्म है, ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं देते, अंतर मन के जख्म है, दिल के जख्म है, दिल घायल हुआ है, दिल को चोट पहुंची है, इसलिए दुखी है। और हमें क्या करना है? हमारी फर्ज अदाई क्या है? हमारे क्या कर्तव्य है? बाबा ने याद दिलाया है, अपने लिए पुरुषार्थ किया, अपने लिए खाया, अपने लिए कमाया और हो गया, इसको राजयोगी नहीं कहेंगे। जो केवल अपना अमृत वेला करता है और अपनी मुरली और अपनी सेवा और हो गया काम पूरा, विश्व के लिए क्या किया, संसार के लिए क्या किया? अब ये मत कहना कि हम तो मनसा सेवा करते हैं। हमेशा यही समझना, मैं जो कर रहा हूं कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो कुछ भी नहीं किया है, क्या करूं और क्या नहीं, बहुत करना है। हम जो कर रहे हैं एक बूंद है और संसार का दुख सागर है। वो है भक्ति का सागर, ये है ज्ञान का सागर। भक्ति भी कैसे हो चुकी है संसार में आज? जर्जर। भक्ति भी कैसे हो गई है? तमोप्रधान, शक्तिहीन, बिना फल वाली, केवल छाया है। कौन सी छाया? भक्त लोग किस छाया की छाया में आराम कर रहे हैं? कौन सी छाया में आराम कर रहे हैं भक्त? अल्पकाल की नहीं, मुरली में क्या था? कौन सी छाया में भक्त आराम कर रहे हैं? आज नहीं तो कल मिल जाएगा, इस छाया में भक्त आराम कर रहे हैं। क्या मिल जाएगा? फल मिल जाएगा। गुरु है, तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु फल नहीं है, केवल छाया वाला वृक्ष है, और ये वृक्ष भी बड़ा जर्जर हो चुका है, शक्तिहीन हो गया है, फलदायक नहीं है, नामधारी है। आत्मा एक कर्जदार है, आत्मा एक खाली है, द्वापर से जो रजो द्वापर से जो जमा था आत्मनिर्वाह का खाता, वो भी खाली है। तब तो जमा था, अब तो वो भी नहीं है। संसार की आत्माएं रिक्त है, संसार की आत्माएं खाली है, संसार की आत्माएं दुखी है, दर्द में है, पीड़ा में है। ऊपर से जो रंगत है, ऊपर से जो दिखावा है, ऊपर से जो शोभा दिखाई दे रही है, खोखली है, अंदर से कुछ भी नहीं है। ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा है, ऐशो आराम की जिंदगी, पर उतना ही दर्द अंदर है, क्योंकि अपने ही अपने नहीं है, अपनों ने ही दगा दिया है, अपने ही अपने वश में नहीं है, और उनको वश में करने का प्रयत्न है, और वो निरर्थक है, इसलिए दुख बहुत है। यदि हमारी भी स्थिति वही रही तो हम संसार के लिए क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? अगर हमें सब कुछ मिल गया, इतना वर्षा मिला, और हमने संसार के लिए नहीं कुछ किया, तो हमें क्या कहा जाएगा? एहसान फरामोश, एहसान को भूलने वाले। जैसे एक व्यक्ति सड़क पर भीख मांग रहा था, गरीब है, नौकरी नहीं है, और एक अमीर व्यक्ति वहां से आता है, दया आती है। वो भिखारी कहता है, आप मुझे कोई नौकरी दे दे, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे नौकरी दे। वो अमीर व्यक्ति कहता है, मैं तुझे नौकरी नहीं दूंगा, मैं तुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता हूं। वो कहता है, क्या? ऐसी खबर तो आज तक कभी सुनी नहीं थी, बिजनेस पार्टनर। वो कहता है, हां, मैं तुम्हें नौकरी नहीं दूंगा, जॉब नहीं देना है तुम्हें, तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ। वो कहता है, मेरा चावल राइस प्लांटेशन है, बहुत बड़ा प्लांट है, खेती है, तुमको काम इतना करना है कि मेरा जो चावल है उसे बेचना है। वो कहता है, बस मैं तो बिल्कुल तैयार हूं। और फिर लास्ट में थोड़ा संकोच के साथ पूछते हैं, आप मुझे कितना दोगे, 5% मैं या 10% मैं और 90% आप, ऐसा ही ना? वो कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं। फिर कैसा? 50-50। वो कहता है, नहीं, मैं 2% लूंगा, तुम 98% लेना। वो कहता है, क्या? उसने कभी सोना ही नहीं था ऐसा। वो कहता है, आप तो मेरे लिए फरिश्ते हो, खुदा के भेजे हुए फरिश्ते। वो कहता है, चलो फिर, पर हां, मेरे 2 रुपए जरूर दे देना तुम, 2%, बाकी तो तुम ही देखना, मैं लास्ट में आऊंगा खाली 2 रुपए लेने। तो वो दूसरे दिन एकदम तैयार हो जाता है, सुबह से उठता है और दिन भर बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, और बहुत खुशी होती है उसको, इतना उसने चावल बेच दिया, एक मास तक दिन रात मेहनत करता है। और फिर वो मालिक आता है, बिजनेस पार्टनर, वो कहता है, मेरे 2%। तो ये सोचता है, सारा मास तो मैंने काम किया, ये तो एक दिन भी नहीं आया, और अब 2% मांग रहा है, मैं क्यों दूं? काम तो मैंने ही किया, सुबह से उठकर रात तक, और मांग अब ये 2% रहा है, किस अधिकार से मांग रहा है ये? उसको कैसे लगेगा? वैसे ही भगवान को भी लगेगा। उसने इतना कुछ दे दिया, कहता है, थोड़ा तो मुझे दो, 2%। और उसको देना अर्थात विश्व की सेवा करना, वही उसको है। He who serveth his fellow man serveth me। जो अपने दुखी बांधवों की सेवा करता है, वो मेरी सेवा करता है। तो पांच प्रकार की दुखी आत्माएं हैं, इनकी सेवा करनी है। ये हमारा फर्ज है, ये हमारी फर्ज अदाई है। और पांच विधियां बताई फर्ज की, पांच प्रकार के फर्ज कहो या पांच तरीके। सबसे पहला, स्वयं को भरपूर करना। सेवा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पांच प्रकार के दुख है संसार में, दिल के दर्द के दुख है। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा हमको? अगर दूसरों की सेवा करनी है तो स्वयं को भरपूर करना पड़ेगा, स्वयं को भरना पड़ेगा। किससे भरना पड़ेगा? सर्व प्राप्तियों से। एक गुण की भी कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? धोखा। एक गुण की भी कमी ना हो तो धोखा हो जाएगा, एक प्राप्ति की भी कमी ना हो तो धोखा हो जाएगा। तो सबसे पहला काम है, यदि विश्व की सेवा करनी है तो स्वयं को सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से, सर्व प्राप्तियों से, सर्व खजानों से भरना होगा। ये सबसे प्रथम सोपान है। जो स्वयं रिक्त है, जो स्वयं खाली है, वो कैसे दूसरों को भर सकेगा? स्वयं को ज्ञान के अथाह खजाने से भरना है। सुबह की मुरली के जबरदस्त साकार महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, जो ज्ञान बाप की बुद्धि में है वो तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए। जो ज्ञान बाप की बुद्धि में है वो सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए। उस ज्ञान सागर को हप कर लेना, उसके सारे ज्ञान को अपने अंदर समा लेना, अपने आप को भरपूर कर लेना, अपने चेतना को भर देना। क्योंकि ये ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं है, ये पढ़ाई है। भक्ति में तो है अल्पकाल का आध्यात्मिक मनोरंजन, ये है पढ़ाई, ये है भगवान का सुनाया हुआ ज्ञान जो आज तक किसी वेद शास्त्र उपनिषद में नहीं था, अब भगवान आकर सुना रहा है। ऐसा ज्ञान जो सर्वोपरि है। तो सबसे पहला तो ज्ञान से भरना है, दूसरा गुणों से भरना है। एक एक गुण पर काम करना पड़ेगा, गुणों की भट्टी करनी पड़ेगी, दिव्य गुणों की भट्टी। एक एक गुण कर एक एक हफ्ता काम करना, कोई भी एक गुण उठा लेना और उस पर काम करना। अभी काम करने का समय है, बाद में समय नहीं आएगा, क्योंकि संस्कार बनने में समय लगता है। जंगल एक दिन में नहीं बनता है, टाइम लगता है। उसी तरह लंबे समय का पुरुषार्थ, तो ये हुए काम होगा। लास्ट में भगवान का रूप कैसा होगा? धर्मराज का होगा। फिर कुछ नहीं कर सकेंगे, फिर समय टीचर होगा। जैसे एक फ्लाइट जा रही है, एक माँ है और एक छोटी सी बच्ची है, जो बहुत रो रही है, बहुत रो रही है, बहुत रो रही है, रो भी रही है और अपनी माँ को तंग भी कर रही है। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश कर रही है पर वो नहीं समझ रही है। फ्लाइट में बैठे हुए बाकी लोग भी उसको समझा रहे, फिर भी नहीं समझ रही है। चीजें उठा उठा के पटक रही है उसकी माँ की, कोई उसे समझा नहीं पा रहा है। उतने में एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है जो कि मिलिट्री का कर्नल है, उसकी ड्रेस है वैसी पहनी हुई, वो उसके कान में दो शब्द बोलता है और उसको सुनते ही वो बच्ची शांत हो जाती। क्या बोला होगा? जिस बच्ची को कोई शांत नहीं कर पाया, वो कर्नल आता है उसके कान में कुछ बोलता है और वो चुप हो जाती है और पीछे जाके वो बैठ जाता है। एयर होस्टेस उसके पास जाती है, पूछती है क्या बोला, ऐसे क्या चमत्कार कर दिया? वो कहता है मैंने उस बच्ची को कहा मेरे ये मेडल देखती हो, स्टार, और मैं मिलिट्री का व्यक्ति हूं और मुझे ये परमिशन दी गई है किसी भी फ्लाइट में जाऊं एक व्यक्ति को उठा के नीचे फेंक सकता हूं। और इतना सुनते ही वो बच्ची शांत हो गई। ज्यादा गड़बड़ की तो क्या कर देगा, उठा के सीधा नीचे। इसलिए शांत होने का अभ्यास अभी करना है। सबसे पहला काम है भरना ज्ञान से, गुण से, शक्तियों से, आठ शक्तियां, शक्तियों पर काम करना, पवित्रता से, संपूर्ण पवित्रता से, लेश मात्र भी अपवित्रता नहीं, देह का कोई संकल्प ही नहीं, देह के आकर्षण की दुनिया से बहुत 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 दूर निकल चुके। मुरली में था ना तुम्हारा, तुम स्टीमर पर बैठे हो, आगे निकल गया है, देह की दुनिया से किनारा कर दिया है, ना देह को देखने की इच्छा है, ना देह के भोग की इच्छा है, देह में है पर जैसे है ही नहीं, इतना देह से डिटैच है। देह की जो खींच है, जन जन की देह की वासना की जो पकड़ है, वह आत्मा में ढीली हो चुकी है। अब आत्मा संकल्पों में रमन करती है, विचारों में रमन करती है, देह में नहीं। सेंशुअल फैंटेसीज सबसे मुक्त है, तभी ज्ञान चिंतन हो सकता है, तभी पवित्रता की शक्ति का अनुभव हो सकता है। आत्मा ने 1% भी यदि देह के रस की तरफ आकर्षण हुआ उसका, तो प्यूरिटी कम, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्यूरिटी अर्थात हाईएस्ट लेवल ऑफ डिटैचमेंट शरीर से। चौथा, समय, समय खजाना है, समय को वेस्ट न करना, समय बर्बाद न करना। बुद्धि भटकती है, घड़ी घड़ी सुनते रहो तो बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। उसके बाद संकल्पों का खजाना, संकल्प ऊंचे रहे, शरीर के संकल्प कम से कम हो, ये करना है वो करना है, ये करना है वो करना है, शरीर की क्रियाएं अपने आप चलू रहे। जितने देह के अधिक संकल्प, उतना देह अधिक आकर्षित करेगा, और जितना देह का अधिक आकर्षण, आत्मा का आकर्षण कम, आत्मा का आकर्षण कम अर्थात पवित्रता कम, और भगवान से दूरी। उसके बाद दुआओं का खजाना, दुआएं जमा करनी है, कैसे करेंगे, आत्माओं की सेवा कर कर। श्रेष्ठ कर्मों का खजाना, श्रेष्ठ कर्म करने, और नौवा खुशी का खजाना, बार बार दुख, बाबा ने कहा दुख की लहर भी ना आए, जरा सा भी दुख है लहर आ रही है अर्थात पवित्रता में कमी है। व्यर्थ संकल्प और स्वप्न में भी ना आए, अधर कुमारों से मुलाकात अगर है तो शायद सेवाएं तो कर रहे हैं पर मन में व्यर्थ चल रहा है, दिन रात सेवाओं में लगे हैं परंतु अविवाहित है पर ब्रह्मचारी नहीं है। लक्ष्य है संपूर्ण ब्रह्मचर्य का, संपूर्ण पवित्रता का, और पवित्रता में जो रस है, आत्मा जब उसको टेस्ट कर लेती है तो संसार के और देह के सारे सुख उसे मिथ्या, गौण, व्यर्थ, निरर्थक मालूम पड़ते हैं, पर वहां तक पहुंचे तो सही। नौ खजाने आत्मा को भरने हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबरदीन जानकी माता, नवनिधिया और अष्ट शक्तियां, 36 गुण, 16 कलाएं, सब कुछ अभी भरना है। ये प्रथम कर्तव्य, पहली फर्ज अदाई संसार की आत्माओं के लिए। उदाहरण दिया बाबा ने, कोई देह की बीमारी से ग्रसित है, उसका कर्म भोग है, तुम क्या करो, अपने कर्मयोग की शक्ति से उसे महादान दो, अपने कर्मयोग की शक्ति का हिस्सा उसे दो, अपने कर्मयोग का हिम्मत उल्लास उसे दो। स्वयं कर्मयोगी बन, दूसरों को कर्मयोगी बनाना बहुत ऊंची सेवा है, और कर्मयोगी बनकर वो अपने कर्म भोग को चुक्त करे, और उसकी जो शरीर की पीड़ा है, उसके जो शरीर के संकल्प है, मैं ही क्यों बीमार पड़ता हूं, मेरे ही शरीर में ऐसा क्यों, बाकी तो बच गए, मेरा ही फ्रैक्चर क्यों, ड्रामा में सब एक्यूरेट है, किसी से भी घृणा नफरत नहीं। सुबह कहा तो सबसे पहला काम है स्वयं को भरना, ज्ञान से भरना है, पढ़ाई से भरना है, ज्ञान रत्नों से भरना है, चिंतन से भरना है, मनन से भरना है, अध्ययन से भरना है, ये पहला काम है। दूसरा है दाता, भरने के बाद क्या करेंगे, दाता। दे कौन सकता है, जो जिसके पास है, जिसके पास है ही नहीं वो क्या देगा। कोई कहते हैं हमारे पास है पर हम, हमको देना पता नहीं, तो क्या कहेंगे, है ही नहीं। जिसके पास है वो दे बिना नहीं रह सकते, मुरलियों में आता है, गला घुट जाएगा, प्रदर्शनी समझाते समझाते। तो दूसरा कार्य कौन सा है, देना है। कैसे देना है, फ्राक दिली से दो। कैसे देना है, ऐसे दो कि उनका कर्ज और मर्ज मिट जाए। दर्द के लिए क्या उपमा की बाबा ने, दो उदाहरण दिए। ये जो दिल का दर्द है ये क्या है, मर्ज है, बीमारी है ये, उन्हें बीमारी से छुड़ाना है। और उनका ऊपर जो कर्ज है, सब आत्माएं कर्जदार है, शक्तिहीन है, खाली है, उस कर्ज से उन्हें मुक्त करना है। कर्ज से किसी को मुक्त करना आसान, उसे कुछ देना पड़ेगा। तो संसार का दर्द बीमारी है और संसार का दर्द कर्ज है, इससे तुम्हें उन्हें छुड़ाना है। तो प्रथम स्टेप क्या है, खुद को भरना, भरते जाना है, भरते जाना है। अमृत वेला शक्तियों से भरना है, गुणों से भरना है, पावर से भरना है, स्पिरिचुअल दुआओं से भरना है, श्रेष्ठ कर्मों से भरना है, भरना। भरने के बाद सेकंड स्टेप देना, देते जाओ, देते जाओ। क्या देंगे, क्या देंगे, हमारे पास दुख ही दुख है तो देंगे क्या, दूसरों को वो दो जिससे गिरे हुए ऊपर उठ जाए। सबसे सूक्ष्म सेवा यही है, जो गिर चुका है, उमंग उत्साह खत्म हो चुका है, उदास हो गया है, जीवन निरर्थक लगने लगता है, कुछ भी सार्थक नहीं, सब व्यर्थ, ऐसी आत्माओं में शक्ति भर देना, उमंग भर देना, पावर भर देना, ये हमारा काम है। तीसरा स्टेप वरदान देना है उन्हें, ये थोड़ी बहुत ऊंची और आगे की सीढ़ी है। आत्माओं को क्या करना, वरदान दे देना, हमारे शब्द, हमारे बोल, हमारी शुभकामनाएं, हमारे संकल्प, हमारे कर्म उनके लिए वरदान बन जाए, पावर बन जाए। ये तीसरा काम है हमारा। चौथा काम स्वराज्य अधिकारी बनना, अर्थात राजा। और राजा हमेशा कैसा होता है, भरपूर होता है, राजा के पास बहुत कुछ होता है। राजा अभी बनना है, और पांचवा विश्व की आत्माओं की रूहानी पालना, ये पांच कर्तव्य है। दो जो कहा वो कर्ज और मर्ज से उन्हें मुक्त करना, और मुख्य ये पांच काम हमें करना है। तो पांच प्रकार की आत्माएं देखी, फिर से चलते हैं। सबसे पहले कोई बीमार है तो बीमार व्यक्ति की क्या कर सकते हम, एक तो स्थूल सेवा, क्योंकि बीमार व्यक्ति निस्सहाय होता है, असहाय होता है, उसकी स्थूल सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य है। अटेंडेंट, केयर टेकर, बड़ा कठोर कर्तव्य है उसका, अपना ज्ञान योग छोड़ना पड़ता है उसको किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करने के लिए। रात रात भर जागना पड़ता है एक बीमार व्यक्ति की सेवा करने के लिए। अटेंडेंट जो होते हैं पेशेंट के, कठोर कर्तव्य है उनका, और दुआएं भी बहुत प्राप्त होती है उसमें। बाकी समय तो सब मदद करते हैं, परंतु बीमारी के समय जो मदद करे वो सच्चा हमदर्द, हिमायती। तो एक तो स्थूल सेवा, दूसरा सूक्ष्म सेवा, मनसा से सेवा, तीसरा शब्दों से सेवा, और चलन से सेवा। कर्मयोगी उनको बना देना, उनको ज्ञान से उनकी सेवा। कोई दुखी है ये समझाना, क्योंकि कितना भी ज्ञानी हो, बीमारी जब आती है तो ज्ञान लुप्त हो जाता है। तेज सिर दर्द, ज्ञान याद रहता है क्या? तेज बुखार, अब बनो आत्माभिमानी। पेट दर्द, मैं आत्मा हूं। फ्रैक्चर, मैं आत्मा हूं। शरीर वैसे ही खींचता है, और बीमारी के समय तो पूरा जोर लगा के खींचता है, सब भुला देता है, आत्मा, परमात्मा, शिव बाबा, मुरली। इसलिए जो रोगी है, जो दुखी है, उनकी सेवा करना बड़ा पुण्य का काम है। बाइबल में वर्णन है, एक व्यक्ति है जा रहा है, एक डाकू ने आया, उसे मार दिया, छुरा घोंप दिया, उसका सामान पैसे लेके लूट के चला जा रहा है, भाग गया, और वो लथपथ वहां बैठा है, रो रहा है, गिरा हुआ है नीचे। वहां से एक पादरी जा रहा है, जो भाषण देने जा रहा है लव ऑफ गॉड पर, और वो उसको पुकारता है, मुझे मेरी मदद करो। वो कहता है, मैं मदद तो करता पर मुझे लेट हो रहा है। पहला चला जाता है, दूसरा आता है, वो भी नहीं मदद करता, तीसरा आता है, वो अपना गधा लेकर आता है बेचारा, उसकी मदद करता है, उसको गधे पे बिठाता है, उधर दवाखाना ले जाता है, मरहम पट्टी करता है। फिर जीसस क्राइस्ट पूछता है, ये कहानी सुनाने के बाद, अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा मददगार कौन होगा, भगवान सबसे ज्यादा पसंद किसको करेगा? द लास्ट, थर्ड, द गुड समैरिटन। बाइबल में शब्द आया समैरिटन, जो ऐसे परोपकारी है, फिलैंथ्रोपिस्ट, वो प्रभु को प्रिय है। द लास्ट, द लोएस्ट एंड द लोवलीएस्ट, जो मानव सेवा को माधव सेवा समझते हैं। जे का रंजले कांजले त्यासी मने जो आपुले, जो दुखी है। शिव ज्ञाने जीव सेवा, ये सर्वोच्च सेवा है। मंदिर में बैठ कर केवल लोग पूजा करते, तुम्हारी नाक सुंदर है कृष्ण के सामने, तुम दिखते सुंदर हो, और जब उधर धूप लगाते हैं तो राम जी की नाक बंद, इधर से उधर नहीं जानी चाहिए धुआ धूप। सेवा। दूसरा मन के रोगी, ये तो बड़े सूक्ष्म है, ये मदद ही नहीं चाहते। पहली बात तो दुखी है पर मदद नहीं चाहते, क्योंकि अहंकार भी बीच में खड़ा है। कैसे मान ले कि हम दुखी है, हम इतने योगी और ज्ञानी और तपस्वी और दुखी, और तुम हमको समझाओगे? हम तुमको समझाते हैं, पर है तो दुखी। सूक्ष्म सेवा करनी है मन से आत्माओं की। आत्माएं अहंकार के मार्ग पर इतनी आगे चली गई है कि समझने समझाने से परे है। जिद के मार्ग पर इतनी आगे बढ़ चुकी है कि समझने समझाने से परे है। समझाने जाओगे तो उल्टा हो जाएगा, तुमको ही समझा देंगे। पर इतना तो दिखाई ही दे रहा है कि ज्ञान योग के मार्ग से आत्मा मुक्त हो चुकी है। इसके लिए मनसा से सेवा करनी है उनकी, अपनी शक्तियां उन्हें देनी है, अपने खाते से उनके खाते भरने हैं। यह है फर्ज ब्राह्मण आत्माओं का। दूसरा, तीसरा, अतृप्त इच्छा है, क्या करें, दुखी है आत्मा है, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना है, शुभ इच्छाओं को पूर्ण करना है। ये मनसा तल पर ही जाता होगा, क्योंकि इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होगी संसार की आत्माओं की, और होने के बाद भी दुखी ही रहेंगे। और प्राकृतिक आपदा है, स्थूल सेवा भी और सूक्ष्म सेवा भी, पांचों प्रकार के दुख है, पांचों प्रकार के कर्ज मर्ज हमें क्या करनी है, सकाश देनी है। क्योंकि भक्ति की शक्ति संसार में आत्माओं में नहीं है, अभी हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्म है, और अपने कर्तव्य के लिए स्वयं को जगाना है कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है। जैसे वो ड्यूटी पर है पायलट तो अलर्ट है, तो जो ड्यूटी पर रहता है उसे कैसा रहना होगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, जागृत रहना पड़ेगा। स्वयं को जागृत रखना ही बहुत बड़ी सेवा है। अगर आप सो गए तो फिर एरोप्लेन से नीचे, खुदा की लाठी बेजुबान होती है, बाइबल में कुरान में लिखा है, खुदा की लाठी बेजुबान होती है, फिर पड़ेगी। अगला कर्तव्य रूहा स्वराज्य अधिकारी बनना। पहला भरना देना, वरदान देना, स्वराज्य अधिकारी बनना अर्थात अपने शरीर का मालिक बनना, अपने मन का मालिक बनना, अपनी बुद्धि का मालिक बनना, अपने संस्कारों का मालिक बनना, स्वराज्य करना, स्वयं पर राज्य करना। और लास्ट रूहानी पालना। अभी रूहानी पालना नहीं करेंगे तो वहां पर विश्व राजन नहीं बन सकेंगे, विश्व महाराजन। आत्माओं की रूहानी पालना अब करनी है, तब वहां जाकर महल खड़े होंगे तुम्हारे लिए, नहीं तो नहीं। आत्माओं की ज्ञान योग से पालना करनी है, स्थूल पालना करनी है। पांच हमारे कर्तव्य है, पांच प्रकार के दुख संसार में है, और भगवान ने इतने ऊंचे ऊंचे सम्मान हमको दिए। और भाइयों के लिए क्या कहा, क्या है भाई, ट्रस्टी। गृहस्थी समझना ही नहीं अपने आप को, गृहस्थी समझे तो दुखी। ट्रस्टी, ट्रस्टी अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है, ये मुझे संभालने के लिए दिया गया है, उस व्यक्ति जैसा नहीं कहना कि काम तो मैं ही सब करता हूं, वो तो आता ही नहीं है, और तो ये तो मेरा हुआ सब, क्योंकि मैं देखभाल करता हूं, वो तो संकट के समय भी नहीं आता है, तो मेरा हुआ ना, सब उसका दिया हुआ है, वो चाहे राजी तेरी रजा में, जो आज सब कुछ है कल कुछ नहीं रहेगा। इसलिए ट्रस्टी अर्थात निर्बंधन, ट्रस्टी अर्थात न्यारे, ट्रस्टी अर्थात मेरा कुछ नहीं, ट्रस्टी अर्थात मेरे को तेरा कर दिया, ट्रस्टी अर्थात मेरा परिवार मेरा घर सब मेरा 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 तेरा कर देना। अगर नहीं किया तो दुख की लहर आएगी। ट्रस्टी अर्थात लगन में मगन, लगन मगन, लगन है तो विघ्न नहीं, दिन और रात का उदाहरण दिया, विघ्नों के साथ लड़ना नहीं है, लगन में रहना है, अपने आप विघ्न समाप्त होंगे, क्योंकि लगन दिन है, प्रकाश है, उजियारा है। और विघन रात है। ये भाइयों से मुलाकात में बाबा कह रहे, ट्रस्टी समझना, लगन में मगन रहना, न्यारे रहना, निर्बंधन रहना, कहीं भी हद में फंसना नहीं। तो माताओं से बाबा ने बातें की, भाइयों से बाबा ने बातें की और पूरी मुरली चलाई और हमें याद दिलाया हमारे क्या क्या कर्तव्य। आप सबको एक काम दे रहे हैं जिसको लिखना है, ब्राह्मणों के रहे हुए कर्तव्य क्या क्या है। ऐसे 10 कर्तव्य लिखने हैं जो अब तक हमने किया नहीं है। रिमेनिंग ड्यूटीज ऑफ ब्राह्मिन्स, ऐसे वो कौन सी बातें हैं, कौन से फर्ज है, कौन से कर्तव्य है, कौन से दायित्व है, कौन सी ड्यूटीज है, कौन से ऑब्लिगेशन है जो अब तक हमने नहीं किए और जो करने चाहिए थे। उदाहरण एक दे रहे हैं, जो ज्ञान छोड़कर गए उनको वापस लाना, ये काम अभी रहा हुआ है। जो यहीं के थे और छोड़ के चले गए, डिस्टर्ब हो गए और छोड़ के चले गए, उनको वापस लाना, ये काम अभी रहा हुआ है। किस विधि से हम लाएंगे उस पर है, संकल्पों से, मनसा से। ये एक हो गया, ऐसे टोटल 10 कर्तव्य निकालने हैं जो बचे हुए कर्तव्य है जो अब तक किए नहीं गए हैं। ऐसे कैसे, ऐसे खुश दिल खुश आत्माओं को, ऐसे वाह वाह के गीत गाने वाली आत्माओं को, ऐसे दूसरों के दिल के दर्द के दुख को हरने वाली आत्माओं को, ऐसे सुख स्वरूप आत्माओं को, ऐसे सुख करता दुख हरता बाप की संतान आत्माओं को, ऐसे हिम्मत और उल्लास दिलाने वाली आत्माओं को, ऐसे दाता बन वरदाता बन आत्माओं को भरने वाली आत्माओं को, ऐसे फ्राक दिली से देने वाली आत्माओं को, ऐसे अपने अपने हिस्से का खाते से दूसरे का खाता भरने वाली आत्माओं को, ऐसे संसार के दुख दर्द में जो आत्माएं हैं उनके कर्ज को मिटाने वाली, उनके मर्ज को मिटाने वाली आत्माओं को, ऐसे राजयोगी आत्माओं को, ऐसे राज ऋषि आत्माओं को, ऋषि शब्द में ही पवित्रता छिपी हुई है सुबह की मुरली, ऐसे राज ऋषि आत्माओं को, ऐसे संसार को खेल समझने वाले और संसार की परिस्थितियों को खिलौना समझने वाली आत्माओं को, ऐसे ज्ञान और योग का बैलेंस रखने वाली, याद और सेवा का बैलेंस रखने वाली आत्माओं को, ऐसे ट्रस्टी आत्माओं को, निर्बंधन आत्माओं को, ऐसे शक्तिदल आत्माओं को, ऐसे जगत माताओं को, ऐसे सुहागिन को, ऐसे हद के संस्कारों में न फंसने वाली आत्माओं को, ऐसे एक ही कार्य करने वाली आत्माओं को। कौन सा कार्य करना है, सुबह से शाम गाना और नाचना, सिंगिंग एंड डांसिंग आत्माओं को, ऐसे ऐसे स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, ऐसे रूहानी पालना करने वाली आत्माओं को, रूहानी पालना के संस्कार स्वयं में भरने वाली आत्माओं को, ऐसे बोल दिया, ऐसे लगन में मगन आत्माओं को, ऐसे एक बाप एक परिवार एक रस एक मत वाली आत्माओं को, ऐसे साक्षी स्थिति में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे साक्षी की सीट पर रहने वाली आत्माओं को, बढ़िया सीट पर रहने वाली आत्माओं को, आराम की सीट में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे श्रेष्ठ सीट पर रहने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे समीपता की राशि की समानता जिसमें ऐसी आत्माओं को, जो दिल्ली है जो सतयुग में समान, गुजरात है यहां समान, और इंडोर जो है बाप के दिल में रहने वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।